आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पार्ट 3, कवित्त और सवैये, जिसके लेखक हैं देव। तो हमने इनके कवित्त और सवैये पढ़ लिए थे, आज हमें इसके प्रश्नोत्तर करने थे, है ना। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 23 पर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो आप बताएंगे, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा यह शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक बताया है, क्योंकि जिस प्रकार एक मंदिर में दीपक प्रकाश फैलाता है, पवित्रता का प्रतीक होता है, उसी तरह श्री कृष्ण भी इस पूरे संसार में अपनी ईश्वरीय आभा का प्रकाश फैला रहे हैं, है ना, पवित्रता का संचार कर रहे हैं और वो शक्ति प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक है। उन्हीं से ये जो संसार है वो उज्ज्वलित है, प्रकाशित है, इसीलिए कवि ने उन्हें एक मंदिर के दीपक जैसा बताया है। प्रश्न 2 देखिए, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपको अनुप्रास और रूपक अलंकार वाली पंक्तियां बतानी है, जो कि मैंने आपको ये पढ़ाते समय भी बताया था। देखिए, तो पहले वाले सवैये में जो पंक्ति है, कटे किंकिनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, इन पंक्तियों में क्या है, अनुप्रास अलंकार। क्यों है? क्योंकि कटे किंकिनी में क और क जो वर्ण है, जो अक्षर है क, इसकी आवृत्ति हो रही है, यानी रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहा है ना क क क, तो यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। ऐसे ही अगली पंक्ति, सावरे अंग लसे पटपीत, पटपीत में प प रिपीट हुआ है, प की आवृत्ति हुई है, और हिये होलसे में ह रिपीट हुआ है, ह की आवृत्ति हुई है, इसलिए इन दोनों पंक्तियों में हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अब रूपक अलंकार की बात करें पहले सवैये में, तो वो है आखिरी पंक्ति में, देखिए, मंद हसी मुखचंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी के मुख को, उनके चेहरे को किसके समान बताया गया है, चंद्रमा के समान, और उनकी हंसी को चंद्रमा की चांदनी के समान बताया गया है, है ना। तो यहाँ रूपक हो गया और संसार को मंदिर रूपी बताया गया है, कृष्ण जी को दीपक रूपी बताया गया है, इसलिए इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न पर आइए, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, पायनी नुपुर मंजू वजे कटि किंकिनी के ध्वनि की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत ये हुलसे बनमाल सुहाई, इन पंक्तियों का आपको काव्य सौंदर्य बताना है, ठीक है। तो जो काव्य सौंदर्य जब हम किसी चीज का लिखते हैं तो उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, दो हिस्सों में लिखते हैं, एक हो जाता है भाव पक्ष और एक हो जाता है शिल्प पक्ष, ठीक है। जो भाव सौंदर्य या भाव पक्ष होता है उसमें उसके अर्थ को, भावों को जो उसमें व्यक्त किए गए उनके बारे में बताया जाता है, वही जो तकनीकी चीजें होती हैं, भाषा, छंद, रस, इससे संबंधित, उसे हम शिल्प पक्ष या शिल्प सौंदर्य में रखते हैं। जैसे देखिए, भाव सौंदर्य में अगर हम इसका लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण भगवान के अंगों की और उनकी आभूषणों की सुंदरता का वर्णन है, कृष्ण जी के एक बहुत ही सुंदर और अलौकिक रूप का भावपूर्ण चित्रण कवि ने यहाँ किया है। कवि कहते हैं, कि कृष्ण के पैरों की जो पायलें हैं और उनके कमर में जो करगनी बंधी है उसके छोटे छोटे घुंघरुओं की ध्वनि बहुत ही मधुर सुनाई पड़ती है। अब कृष्ण जी के सांवले अंगों में जो पीले रंग का वस्त्र उन्होंने लपेटा हुआ है वो भी बहुत ही आकर्षक लग रहा है। श्री कृष्ण भगवान के हिये में यानी हृदय में, हृदय के पास यानी गले में एक सुंदर माला भी शोभा पा रही है। तो यह पूरा का पूरा चित्रण और पूरा कृष्ण जी का जो वर्णन है रूप का वो बहुत ही भावपूर्ण, प्रभावशाली और सुंदर है। ठीक है, ऐसे आप इसका भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। वहीं इसके शिल्प सौंदर्य की या शिल्प पक्ष की बात करेंगे तो पहले भाषा देखिए, भाषा क्या है इसकी? शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा। देव ने ये कवित्व और सवैये किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में। तो आप लिखेंगे भाषा है इसकी शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा। और अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार ज्यादातर इस्तेमाल किए हैं देव ने, और ये जो पंक्तियां यहां दी गई हैं इनमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, रस की बात करेंगे तो श्रृंगार रस है, और छंद की बात करेंगे तो छंद सवैया है, और इसमें हम जो रीतिकालीन कविताओं में जो सौंदर्य जिस तरीके से प्रकट किया जाता था उसकी झलक भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसके आप शिल्प पक्ष में लिखेंगे। तो ऐसे भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दो भागों में इसके काव्य सौंदर्य को हम बांट सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। दूसरे कवित्त के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्ण से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, जो दूसरे कवि होते हैं वो वसंत को अक्सर या तो कामदेव के रूप में प्रकट करते हैं या कामदेव के प्रभाव से जो नायक नायिका प्रभावित होते हैं उनके रूप में वर्णन करते हैं, है ना। लेकिन कवि ने ऐसा कुछ नहीं किया है, कवि ने वसंत ऋतु को कामदेव ना मानकर बल्कि कामदेव का पुत्र माना है, है ना, एक छोटे बच्चे के रूप में उसका वर्णन किया है। दूसरा, जो वसंत है वो जो वसंत के मादक रूप को, है ना, उसमें जो एक मादकता होती है, एक नशा सा होता है, कामदेव का प्रभाव होता है, वो सब दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि देव ने क्या दिखाया है? बच्चे की मासूमियत, नन्हे बच्चे की मासूमियत, उसका स्वागत कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें दिखाई हैं। और वसंत का जो परंपरागत वर्णन होता चला आया है, मतलब बाकी जो भी कवि करते चले आए हैं उसमें क्या दिखाते हैं? चारों ओर हरियाली होती है, फूल खिल रहे होते हैं, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, है ना, झूले झूल रहे होते हैं। इसके साथ ही सबसे मुख्य होता है नायक और नायिका का मिलन। वसंत का जहां वर्णन आता है वहां अधिकतर नायक और नायिका का मिलन दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर देवदत्त जी ने कोई भी नायक या नायिका का वर्णन ना करते हुए प्रकृति का ममतामयी रूप भी वर्णन किया है ना। उन्होंने किया है कि जो वसंत आया है तो पूरी प्रकृति कैसे माता की तरह बच्चे की नजर उतार रही है, बच्चे को दुलार रही है, प्यार कर रही है, उसका स्वागत कर रही है, और कैसे उसे उसका लालन पालन, उसका पोषण कर रही है, है ना। तो यहाँ पे कवि ने श्रृंगार रस को बदल के वात्सल्य रस प्रकट कर दिया है। ठीक है, तो इन सारी बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कवि देव ने ऋतुराज के वसंत का जो बाल रूप का, जो शिशु रूप का वर्णन किया है वो परंपरागत वसंत वर्णन से बिल्कुल अलग है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, वसंत ऋतु में सुबह कैसी होती है इसका वर्णन देव कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि वसंत ऋतु जो है वो कामदेव का पुत्र है, छोटा सा बालक है, और जब वो आया है तो पूरी की पूरी प्रकृति, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी उसके स्वागत में लग गए हैं, है ना। जो गुलाब के छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल हैं वो चुटकी दे देकर वसंत को जगा रहे हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप में इस पंक्ति का इस्तेमाल किया गया है। असल में कवि बताना चाहते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तभी गुलाब के फूल खिलना शुरू करते हैं, है ना। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि चारों ओर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं। तो चारों ओर जो गुलाब के फूलों का खिलना है इसका वर्णन कवि ने ऐसा किया है कि वो चुटकी बजा बजा के यानी एक एक करके खिल रहे हैं और वसंत को जगा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो आप बताएंगे चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने स्फटिक के रूप में, जो कि एक प्राकृतिक क्रिस्टल प्राकृतिक शिला होती है, उसके रूप में देखा है, है ना। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो चारों ओर जहां भी देख रहे हैं बस सफेद सफेद चांदनी ही नजर आ रही है, और उन्हें लगता है कि धरती पर दही का समुद्र बहने लगा हो। कैसा? दही का समुद्र बहने लगा हो और फर्श पर किसी ने दूध का फेन यानी झाग, फेन मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, झाग, दूध का झाग बिखर गया हो। ये जो स्वच्छ पारदर्शी दूध के बुलबुले हैं ऐसी लग रही है चांदनी कि मानो कितनी सुंदर और पवित्र हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसका भाव क्या है, कवि चांदनी रात में क्या कल्पना कर रहा है कि जो पूरा का पूरा आकाश जो आसमान है वो एक दर्पण है, यानी एक शीशा है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं ना, वो दर्पण है, और उसके बीच में चमकता हुआ गोल गोल चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे राधिका रानी प्यारी राधा रानी का मुखमंडल दिख रहा हो। जैसे जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, हम ही उसमें रिफ्लेक्ट होकर दिखते हैं, वैसे ही वो लग रहा है कि राधा रानी का चेहरा वहां पे प्रतिबिंबित हो रहा हो, यानी आकाश एक शीशा है, दर्पण है, नीचे से राधा रानी जब उसमें अपना चेहरा देख रही है तो चांद के रूप में वो प्रतीत हो रहा है। तो ये वाली पंक्ति कह के कवि ने चांदनी रात की और चंद्रमा की दिव्यता का वर्णन भी किया है। तो ये तो इसका भाव हो गया, अब हमें इसका अलंकार भी बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकती है, वो कहेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है, जिसका कारण वो ये देंगे कि चांद की राधा रानी को चांद की उपमा दी गई है, पर असल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है, चांद का जो सौंदर्य है वो राधा रानी का प्रतिबिंब जैसा लग सकता है, उनके सौंदर्य जैसा नहीं, यानी राधा रानी का सौंदर्य उनकी सुंदरता चांद से अधिक है, चांद उनके सामने हीन है, इसीलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, कौन सा, ध्यान रखिएगा आप लोग, व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार बिल्कुल नहीं है, व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 देखिए। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। जो चांदनी रात का प्रकृति का वर्णन कवि ने किया है उसमें उन्होंने कौन कौन से उपमान यानी कौन सी उपमाएं किसको दी हैं वो आपको बतानी है। तो आप बताएंगे कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता और चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला, जो कि एक प्राकृतिक क्रिस्टल होता है, ठीक है, स्फटिक शिला लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे प्राकृतिक क्रिस्टल। तो स्फटिक शिला, उससे निर्मित मंदिर, दही का समुद्र, दूध का फेन या दूध का झाग, मोतियों की चमक और दर्पण की पारदर्शिता और स्वच्छता जैसे अनेकों उपमानों का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आप चाहें तो बुक में नोट कर लीजिए या कहीं पेंसिल से अलग लिख भी सकते हैं। कवि ने चांदनी रात की उज्जवलता या सुंदरता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला यानी प्राकृतिक क्रिस्टल, उससे निर्मित मंदिर, दही का समुद्र, दूध का फेन या दूध का झाग, मोतियों की चमक, नवयुवतियों की सुंदरता उनका यौवन, दर्पण यानी शीशे की पारदर्शिता और स्वच्छता जैसे अनेकों उपमानों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो ये जो आपने सवैया और कवित्व पढ़े हैं, इनके आधार पर देव की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। तो आप कैसे लिखेंगे? कवि देव को रीतिकालीन कवियों में काफी महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली माना जाता है। पठित कविताओं के आधार पर हम देव की निम्नलिखित काव्यगत विशेषताएं बता सकते हैं। निम्नलिखित लिखेंगे क्योंकि नीचे आप उनकी विशेषताएं लिखने जा रहे हैं ना। तो पठित कविताओं के आधार पर हम देव की निम्नलिखित काव्यगत विशेषताएं बता सकते हैं। फिर आप लिखेंगे, कवि देव ब्रज भाषा के कवि हैं या ब्रज भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, इन कविताओं में उन्होंने कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में मधुरता, कोमलता और माधुर्य गुण देखने को मिलता है। ठीक है, काव्यगत विशेषता में हमने भाषा बता दी, छंद बता दी और भाषा में कौन सा गुण है ये बता दिया। फिर हम बताएंगे रस कौन सा है। चौथा आप लिखेंगे कि इनमें श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। आगे पांचवा पॉइंट लिखेंगे, कवि देवदत्त ने प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। कवि की रचनाओं में हमें अलंकारों का प्रयोग भी बहुत ही सहज रूप से देखने को मिल जाता है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक और उपमा जैसे अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है। ठीक है, कौन कौन से? अनुप्रास, रूपक और उपमा जैसे अलंकारों का सटीक प्रयोग किया है और इनकी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सहज रूप से देखने को मिल जाता है। अब अगली एक महत्वपूर्ण चीज, जो वसंत ऋतु वाला कवित्व है उसमें हमें पता चलता है कि उन्होंने परंपरा से हटके कोई चीज करी है ना। तो प्रकृति वर्णन में कवि पारंपरिक तरीके से हटके वर्णन करता है। उदाहरण के लिए, जैसे बाकी कवि वसंत को कामदेव मानते हैं या नायक नायिका के मिलन के रूप में इस ऋतु का वर्णन करते हैं, लेकिन कवि ने इसमें एक नन्हे शिशु का, एक बच्चे का चित्र चित्रित किया है। यहाँ पे उन्होंने श्रृंगार रस हटा के वात्सल्य रस प्रकट किया है और नायक नायिका ना दिखाकर ममतामयी प्रकृति दिखाई है। ठीक है, तो ये आपके 9 प्रश्न हो गए। अब आगे है रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 10, आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। ये देखिए, आपकी रचना शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए ये एक प्रश्न दिया गया है। देखिए, किसमें कहां लेखक छुपा होता है, कौन लेखिका छिपी होती है, आपको पता नहीं होता। आप में से ही कई बच्चे बड़े होकर अच्छे लेखक या लेखिका बन सकते हैं। तो शुरुआत आपको अभी से करनी होगी, अपने शब्दों को बांधना सीखिए, है ना। प्रकृति, आप अपने आसपास जो भी देखते हैं उसका वर्णन करने का सोचिए, उसका चित्रण करने के बारे में सोचिए कि आपको कैसा महसूस होता है। जैसे इन्होंने कहा है कि पूर्णिमा की रात पे छत पे जाइए और जब काले आसमान में पूरा गोल चमकता हुआ चांद आपको दिखाई देगा, तब आपके मन में क्या क्या भाव उत्पन्न होंगे, क्या क्या विचार आएंगे, वो सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, वो सारी बातें आपको एक कविता के रूप में, ज्यादा नहीं तो बस 3-4 पंक्तियां आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क या आपका असाइनमेंट वर्क हो सकता है, आपको एक कविता जैसी तैयार करनी है। और अगर कविता लिखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं कि आपको उसकी सुंदरता कैसी लग रही है ना, अच्छे अच्छे उदाहरण बिंब देखकर प्रकट कीजिए कि आपने उसका उसकी जो तुलना है वो आपने किससे की है, कैसा महसूस किया है उसे देख के सामने वाले के सामने, वो आपको प्रकट करना होगा। ठीक है, तो ये रचना और अभिव्यक्ति हो गई आपकी। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठेतर सक्रियता। इसमें दो बिंदु दिए गए हैं। पहला है, भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो देखिए 6 ऋतु मैं आपको गिनवाती हूं, आप कहीं नोट कर लीजिए। पहली है ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी का जो मौसम होता है ना, समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु। दूसरी है बारिश का जो मौसम होता है यानी मॉनसून का सीजन, वो वर्षा ऋतु। तीसरी है शीत ऋतु यानी सर्दियों का मौसम, इंग्लिश में कहते हैं हम विंटर सीजन। फोर्थ है वसंत ऋतु, और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्प्रिंग सीजन। पांचवा है ऑटम, ठीक है, पांचवा क्या है ऑटम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, आप में से पता है किसी को? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो हम बता दें कि ये होती है पतझड़ वाली जो ऋतु होती है, शरद ऋतु भी इसे कहते हैं। ठीक है, शरद ऋतु होती है ऑटम। और छठी होती है हेमंत ऋतु, जिसे इंग्लिश में हम प्री विंटर सीजन कहते हैं, यानी सर्दियों से पहले की जो ऋतु होती है, जो मौसम में परिवर्तन आ रहा होता है, वही होता है हेमंत ऋतु। तो कौन कौन सी 6 ऋतु मैंने बताई, फिर से रिपीट कर रही हूं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। ठीक है, ये 6 ऋतुएं भारतीय संस्कृति में मानी गई हैं, और इसमें से ऋतुराज किसे माना जाता है, यानी सारे ऋतुओं की जो रानी है वो है वसंत ऋतु, हर मौसम का राजा वसंत। क्यों? क्योंकि इसमें जो मौसम होता है ना वो सबसे अच्छा, सबसे सुहावना होता है, चारों ओर हरियाली होती है ना, रंग बिरंगे फूल खिल रहे होते हैं, नए नए पेड़ पौधे जन्म ले रहे होते हैं ना, हर तरफ एक सृजन दिख रहा होता है आपको, नई चीजें पैदा हो रही है, सृजन हो रहा होता है, और पशु पक्षी भी बहुत खुश होते हैं ना, चिड़िया चहचहाती रहती हैं, आसमानों में उड़ती हुई दिखती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, हवा भी सुगंधित हो जाती है क्योंकि जो नए फल फूल उग रहे होते हैं पेड़ पौधों पे, जो खिल रहे होते हैं फूल, उनकी सुगंध चारों ओर फैली होती है ना, पशु पक्षी भी खुश, पेड़ पौधे भी खुश, और साथ ही यह सब देख के हम मनुष्य भी बहुत खुश हो जाते हैं। वसंत ऋतु में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत अधिक ठंड होती है, इसीलिए ये जो ऋतु है उसे ऋतुराज कहा जाता है, यानी ऋतुओं का राजा। ठीक है, 6 ऋतुएं बता दी, अगले बिंदु पे आइए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, हम मनुष्यों की वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ना, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिससे प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और इस प्रकृति के बिगड़ते हुए संतुलन की वजह से मौसम में भी या ऋतुओं में भी कई बदलाव आ रहे हैं। जैसे वर्षा के मौसम में या तो कभी कभी वर्षा नहीं होती तो कुछ स्थानों पर सूखा पड़ जाता है ना, और या इतनी वर्षा हो जाती है कि वहां बाढ़ के आसार होने लगते हैं, है ना, लोगों का नुकसान हो जाता है। ठंड में भी आजकल कभी कभी बेमौसम की बरसात हो जाती है, या कभी ठंड उतनी नहीं पड़ती जितनी पड़नी चाहिए, तो कहीं पे बेहिसाब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे ही जो गर्मियों का मौसम है, बहुत पहले से गर्मी शुरू हो जाती है और बहुत दिन तक गर्मी रहती है ना, जो तापमान है पारा पचास पचास डिग्री तक जा रहा है, आदमी धूप में निकलता है तो हम झुलसने लगते हैं, इतनी तेज गर्मी होती है ना, क्योंकि ओजोन लेयर भी हट रही है तो हमारे जो सूरज की किरणें वो सीधे हम पे पड़ती हैं आके। तो ये प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, जो ऋतुओं में बदलाव हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो आपको बताने हैं कि ऋतुओं में ये परिवर्तन आ रहे हैं और इन समस्याओं से हम कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहले तो पेड़ लगाने होंगे, पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। बिजली पानी जैसी चीजों को बर्बाद नहीं करना होगा, है ना, और फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, धुआं निकलता है, इस पे नियंत्रण करना होगा क्योंकि इससे जल भी गंदा हो रहा है और वायु भी गंदी हो रही है। सड़कों पे वाहन का प्रयोग जो है वो सीमित करें, अगर जरूरत ना हो तो पैदल चलें या साइकिल से चलें, है ना, वरना धुआं होता है और पेट्रोल की बर्बादी होती है, इससे प्रदूषण बढ़ ही रहा और कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए या तो पैदल चलें या साइकिल से चलें और वाहन का उपयोग कम से कम करें। एसी कूलर जैसी चीजें भी मौसम में प्रदूषण को बढ़ाती ही हैं, तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान देना होगा। नदियों को, तालाबों को, जो भी जलाशय हैं उनको साफ रखना होगा, नए पेड़ पौधे लगाने होंगे। और इसके अलावा क्योंकि आप युवा वर्ग हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद भी जागरूक रहें और बाकी जो आपके आसपास आपके दोस्त हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन हैं या आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनमें भी आप जागरूकता फैलाएं। अगर कोई गलत काम होते हुए या प्रकृति के खिलाफ कोई काम आप होते हुए कोई गतिविधि ऐसी देख रहे हैं जो सही नहीं है तो उसको भी आपको रोकना चाहिए, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो गैसों का, जो गैस, जो धुएं, ये जो हवा में बढ़ रहे हैं ना, इससे तापमान बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कई बीमारियां भी होती हैं। इन सारी चीजों से हमें, इंसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही प्रकृति को भी बहुत नुकसान हो रहा है, जिसे हमें बचाना होगा। ठीक है, ये भी हो गया। आप देख लीजिए शब्दार्थ देख लीजिए फिर से एक बार। मंजू यानी सुंदर, कटी यानी कमर, किंकिनी यानी करदनी कमर में पहनने वाला एक आभूषण, लसे यानी सुशोभित, हुलसे यानी आनंदित होना, किरीट मतलब मुकुट, मुखचंद यानी मुख रूपी चंद्रमा, जुनाए यानी चांदनी, द्रुम पेड़, सुमन चिंगोला यानी फूलों का जबला, केकी मोर, कीर तोता, हलावे हुलसावे यानी बातों की मिठास, उतारो करे रोई नान ये होता है नजर उतारना, कंजकली कमल की कली, चटकारी यानी चुटकी, फटिक यानी स्फटिक के लिए लिखा गया है, एक प्राकृतिक क्रिस्टल होता है, सिलानी यानी शिला पर, उददी यानी समुद्र, उमगे उमड़ना, अवंत जो कम ना हो, भीती दीवार, मल्लिका बेले की जाति का एक सफेद फूल, मकरंद फूलों का रस, आरसी आईना। ठीक है, तो यहाँ आपका ये जो पाठ है वो पूरा होता है। अब मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक ये जो कवित्व और सवैये हैं इनको आपको दोबारा से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें आपको हिंदी के अलावा ब्रजभाषा कैसे पहले लिखी जाती थी इसका ज्ञान होगा, है ना, दूसरा आपको प्रकृति का वर्णन या श्रृंगार रस का वर्णन कैसे किया जाता है इसका भी पता चलेगा, और अब जो कविताएं लिखी जाती हैं क्योंकि अब आधुनिक युग चल रहा है हिंदी साहित्य का, वो रीतिकालीन युग से किस प्रकार अलग है ये भी आपको अंतर पता चल पाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।